ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति पेना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों सहित उच्च शिष्टमंडल भी आया है। राष्ट्रपति पलासियोस की ये पहली जबकि पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की ये दूसरी भारत यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पराग्वे के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे।
राष्ट्रपति पेना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे, जिसके दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विकसित किया है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और मंगलवार को संपन्न होगी।
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के नेता विमानन क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के साक्षी बनेंगे। IATA की पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित हुई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये को लेकर सांसदों का 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहा है। NCP-SCP की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथियोपिया की यात्रा को सम्पन्न किया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया के नेशनल यूनिटी के उपमंत्री के नेतृत्व में पीपल्स जस्टिस पार्टी के प्रतिनिधियों और पार्टी केदिलन राकेत के साथ बैठक की। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशक तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है।
भारत बहुत कैपेबल है। आज हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। टेररिज्म के खिलाफ भी भारत ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत और टेररिज्म के बीच में है? ये लड़ाई पूरे अभी विश्व में धीरे धीरे फैल रही है, तो पूरे विश्व को जागृत करना जरूरी है, पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहाँ पर भेजा, इतने दूर भेजा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज JEE एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम वेबसाइट result25.jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। JEE एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। गाजा पट्टी में कल खाद्य सहायता वितरण केंद्र के निकट 30 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमास संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल समर्थित संगठन द्वारा चलाए जा रहे रफा में एक सहायता स्थल के निकट ये घटना हुई। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति ने बताया कि उसके फील्ड अस्पतालों में पहुंचाने पर 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 179 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। देश भर में COVID-19 के 3,960 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे ज्यादा 1,435 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में 483 मामले दर्ज हुए हैं। वैश्विक टैरिफ तनाव और एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स तथा निफ्टी दिन के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 398 अंक गिरकर 81,053 पर था और निफ्टी 118 अंक नीचे गिरकर 24,633 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।